नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में अनंत जीत सिंह नारुका और दर्शना राठौर की जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विश्व बैडमिंटन टूर फाइनल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने की जीत के साथ शुरुआत। कोहरे के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में देरी, शुभमन गिल श्रृंखला से बाहर। सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में महिला दृष्टिबाधित विजेता टीम से की मुलाकात। चर्चा की शुरुआत करते हैं हम निशानेबाजी से। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में अनंतजीत सिंह नारुका और दर्शना राठौर की जोड़ी ने सीनियर स्कीट मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान की इस जोड़ी ने ओलंपियन मेराज अहमद खान और अरीबा खान को कड़े मुकाबले में 45-43 से हराकर खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। शानदार प्रदर्शन रहा उनका करीबी मुकाबले में।
जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अनंतजीत सिंह नारुका जब भी उतरते हैं तो उन पर नजरें हर एक की टिकना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये वही नारुका हैं जिन्होंने ओलंपिक में, आपको याद होगा, पेरिस ओलंपिक में केवल एक पॉइंट से, महज एक पॉइंट से कांस्य पदक से चूक गए थे और बहुत ही उम्दा इनका प्रदर्शन रहा। और दर्शना राठौर जब इनके साथ आती है तो एशियन चैंपियनशिप में हमने देखा, दोनों के चैंपियनशिप के बाद जो है गले में सोने का तमगा झूल रहा था गले में, और दोनों बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके सामने जो राइवल है, आपका जो अपोजिशन है, वो बहुत स्ट्रांग है। मेराज अहमद खान जो कि ओलंपियन रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं ओलंपिक में, उनको आपने कड़े मुकाबले में जो है शिकस्त दी है, ये अपने आप में और भी काबिले तारीफ है। और यही स्थिति बदस्तूर आप देखेंगे जूनियर वर्ग में भी रही, वहां पर भी जो कुछ परफॉर्मेंस जो कुछ देखने को मिला है
वो भी बहुत हो गया, या लक्कू वेंकट लक्ष्मी की जोड़ी ने भी जीता।
जी जी, वहां दोनों का ही इक्वल पार्टिसिपेशन था, यानी इक्वल 19-19 इन्होंने निशाने साधे हैं। लेकिन अगर आप सीनियर में देखते हैं तो थोड़ी सी स्थिति अलग थी, वहां दर्शना राठौर ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया नारुका की तुलना में। यह बहुत बड़ी बात है कि एक युवा होनहार खिलाड़ी जो है अपने से तजुर्बेकार प्लेयर से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। 24 निशाने उन्होंने साधे थे जबकि नारुका ने 21 निशाने साधे, लेकिन ये भी भारी पड़े मेराज और अरीबा खान की जोड़ी पर।
जी, और उधर हरियाणा की राइजा ढिल्लो और ईशान सिंह लिब्रा की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता सीनियर वर्ग की अगर हम बात करें तो। और जूनियर में राजस्थान की जोड़ी यशस्वी राठौर और यशवर्धन एस राजवत ने 39 हिट करके दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं पंजाब के हरमेहर सिंह लल्ली और परमीत कौर की जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इनका भी प्रदर्शन शानदार रहा, हालांकि पदक तो नहीं जीत पाए स्वर्ण, लेकिन
नहीं, दरअसल अच्छी बात यह है शूटिंग के खेल में कि हमारी नेशनल चैंपियनशिप का जो स्टैंडर्ड है,
जी,
आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, हमारे श्रोताओं को भी बहुत अजीब लगेगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप से कम नहीं है।
जी,
ओलंपिक मेडलिस्ट के लिए भी क्वालिफाई करना जो है
जी
बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वो कैसे क्वालिफाई करेगा। कंपटीशन बहुत जबरदस्त है, 10-10, 12-12 हजार प्लेयर्स जो आते हैं वो उसमें शिरकत करते हैं हर स्टेट में। पहले हरियाणा का इतना वर्चस्व नहीं हुआ करता था इस खेल में, लेकिन उसके बाद अब हरियाणा भी एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आया है। तो अब तमाम राज्य जो हैं, ये इनका जो, अगर आप इनका स्तर देखेंगे तो ये विश्व स्तर से वाकई कम नहीं है।
और इस खेल की भी अगर हम बात करें तो अंक में हमें दिखता है 19-19, 20-21, लेकिन ये बहुत एक्यूरेसी और प्रिसीजन वाला गेम है, तो इसमें जो 19-18 का भी अंक है वो काफी एक्यूरेसी के साथ किया जाने वाला रहता है इसमें।
बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखें ऐसे स्कीट इवेंट है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि स्कीट इवेंट पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो स्कीट इवेंट इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगर एक तरफ से जो है टारगेट आता है और आप एंटिसिपेट करते हैं कि यहाँ टारगेट आएगा, जैसे ट्रैप इवेंट में होता है, और आप उस पर निशाना साधते हैं सीधा, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। एक ऐसा गेम जो स्पेक्टेटर फ्रेंडली नहीं है उतना ज्यादा जितना कि अन्य खेल हैं, लेकिन उसके बावजूद मजा आता है ऐसी स्कीट जैसे इवेंट को देखने में, और भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है, तो हर कोई चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का परचम लहराता रहे इस खेल के जरिए से।
जी, और उम्मीद करेंगे कि भारत का प्रदर्शन जो है ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परचम पर भारत लहराता रहे। चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। चीन के हांगचाओ में विश्व बैडमिंटन टूर फाइनल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चीन के लियांग वेकिंग और वांगचांग को 2-1 से हराया। पहले सेट में पिछड़ने के बाद भारतीय जोड़ी ने शानदार वापसी करते हुए दोनों सेट अपने नाम किए। पहला सेट 12-21 से हार गए थे, उसके बाद 22-20 और 21-14 से ये मुकाबला जीता उन्होंने।
बहुत अच्छी बात है कि अगर आप गिरकर वापसी करते हैं, पिछड़ने के बाद वापसी करते हैं और वो भी बहुत ही चैंपियन वाले अंदाज में, उसका मजा कुछ अलग ही होता है। क्योंकि चाइना की जो जोड़ी है ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट है, वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो आप जब इतने अच्छे राइवल के सामने, प्रतिद्वंदी के सामने अपना शानदार खेल का प्रदर्शन करते हैं, अपने सर्वांगीण खेल को दिखाते हैं, चाहे वो ड्रॉप शॉट्स हों जो आप, और अपने डाउन द लाइन जो आपने शॉट्स खेले वो बड़े कमाल के थे। लेकिन पहला जो गेम था उसमें कहीं ना कहीं चूक हो गई, उसमें मैं समझता हूं कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की भी कमी दिखी। लेकिन दूसरे गेम में जिस तरह से इन्होंने वापसी की है और जिस तरह से अच्छी बड़ी बड़ी रैलियां चली, अपने धैर्य का भी परिचय दिया, क्योंकि अकेले आक्रामक होकर काम नहीं चलता, आपको जहां जरूरत होती है आपको वहां अपने धैर्य का भी परिचय देना होता है, तो उसमें ये जोड़ी का जवाब नहीं है।
और इस साल भी अगर हम बात करें इस जोड़ी की, तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और चाइना मास्टर्स के फाइनल में जगह बनाई थी इस जोड़ी ने, लेकिन कोई खिताब अपने नाम नहीं कर सके थे।
बहुत यही एक दुखती रग है जी, इन दो प्लेयरों के नाम पर जब भी जिक्र होता है बैडमिंटन का तो हम इनसे बहुत उम्मीद पालते हैं। क्योंकि जैसे आपने चाइना मास्टर्स का, तो मैं आपकी बात में एक और बात और जोड़ देता हूं कि इसके अलावा हांगकांग ओपन जो हुआ था वो सुपर 500 बड़ा टूर्नामेंट था, वो भी उतना तो नहीं था चाइना मास्टर्स, क्योंकि वो सुपर 750 वाला था मामला, तो दोनों में सिल्वर मेडल जीता था। और 5 ऐसे टूर्नामेंट हुए हैं इस साल जहां ये जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरी बाधाओं में लड़खड़ाना इस जोड़ी के साथ थोड़ी सी एक चुनौती बन गई है, थोड़ी नहीं, इस साल तो काफी चुनौती बन गई है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार जो है इस समस्या से ये निजात पाए
और ये साल का अंत एक जीत के साथ वो करें
निश्चित तौर।
चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में कोहरे के कारण टॉस में अब तक नहीं हो सका है। 5 मैचों के T20 श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। 5वां और आखिरी मुकाबला शुक्रवार को अहमदाबाद में होगा। अब तक कोहरे के कारण मैच शुरू नहीं हो सका। और एक और बुरी खबर ये आई है कि उप कप्तान शुभमन गिल भी इस श्रृंखला से बाहर हो गए।
बुरी खबर कह सकते हैं आप, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से अगर आप समग्र तौर पर देखेंगे तो मैं बुरी खबर इसलिए नहीं कहूंगा कि हमारे पास एक प्लेयर के कई कई रिप्लेसमेंट हैं। अब आपके पास यशस्वी जायसवाल के लिए अवसर रहेगा, या जो ऋतुराज गायकवाड़ हैं, संजू सैमसन हैं, इनके लिए अवसर रहेगा, और ये काफी अच्छा प्रदर्शन भी करते रहे हैं T20 क्रिकेट में। लेकिन रही बात जो आपने मैच का कहा कोहरे का, वो जरूर एक पीड़ादायक है, क्योंकि हमें वर्ल्ड कप से पहले 6-7 मैच कुछ खेलने हैं अभी, और उसमें से भी एक मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा, वो भी एक अच्छी टीम के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा झटका है, और उम्मीद करनी चाहिए कि खेल शायद शुरू हो, क्योंकि लेटेस्ट 9:46 तक जरूर इसका इंतजार किया जाएगा। लेकिन अभी ये तय है जो कि नियमों के मुताबिक अगर 1 घंटे का खेल बाधित होता है तो उसमें ओवर्स जो है वो कम कर दिए जाते हैं
जी। और इस श्रृंखला में ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी बाहर हो चुके हैं, जिनका ये प्रदर्शन देखा जाए तो शानदार रहा है अब तक।
जी हाँ बिल्कुल, अक्षर पटेल जिसको जैसा मौका मिलता है वो अपनी तरफ से अपना एक अच्छा ऑलराउंड खेल का प्रदर्शन करता है। जहां जरूरत पड़ती है आपको पिंच हिटर के तौर पर भेजने की, चाहे वो पिंच हिटर वाला काम करें या ना करें वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि वो कंडीशन के हिसाब से खेलना, जल्दी आकर पहले भेजकर, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मुझे लगता है कि अक्षर पटेल एक ऐसी, उनमें एडेप्टेबिलिटी है, टीम की जरूरत के हिसाब से खेलते हैं, बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो, कहां डिफेंसिव बॉलिंग करनी है, कहां अपनी स्टेटर वन से परेशान करना है अपने ओपोनेंट को, ये सारी चीजें उनको वाकई विशिष्ट बनाती हैं।
और अगर ये मुकाबला नहीं होता है तो ये कप्तान, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, उनके लिए भी अच्छी खबर नहीं होगी, लगातार वो बल्लेबाजी में खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं।
जी हाँ, 21 पारियां हो गई हैं जी, 21 पारियों से हम उनकी
14-15 की औसत से उन्होंने,
हाँ 14-15 की औसत, और स्ट्राइक रेट देखें आप, वो भी 120 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट जी। तो एक ऐसा प्लेयर जिसका हम 175 का स्ट्राइक रेट देखने की हमें आदत पड़ गई थी, जिनके लिए हम अक्सर ये कहते थे कि ये तो 360 डिग्री प्लेयर है, हर तरफ शॉट्स खेलता है, अब एजेस भी लग रहे हैं और कहीं ना कहीं एकाग्रता की कमी कह लीजिए, मैं समझता हूँ कि इससे जरूर वो निजात पाएंगे और भारत को अगर वर्ल्ड कप जीतना है,
जी
उस सफलता को दोहराना है अपनी पिछली कामयाबी को,
जी
तो उसमें निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, इनका लय में आना बहुत जरूरी है।
जी और एक अच्छी खबर ये भी है कि करिश्माई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने आईसीसी की ताजा जारी T20 रैंकिंग में रेटिंग के मामले में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह ली है। वरुण T20 में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने। अभी हाल में तो T20 में 50 विकेट भी हासिल किया और लगातार जब भी गेंद कप्तान उनको देते हैं, चाहे वो पावर प्ले हो या मिड ओवर्स हो, वो अच्छा प्रदर्शन करके देते हैं।
देखिए, अब यहाँ जो सीरीज चल रही है साउथ अफ्रीका की, तो
जी
इसमें अभी 3 मैचों में हर मैच में वो दो दो विकेट लेते रहे
जी
हैं,
छह
छह
विकेट लिए
विकेट यानी जो उनकी निरंतरता को दिखाता है,
जी
उनकी कंसिस्टेंसी लेवल बड़ा जबरदस्त है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं जैकब डफी,
जी
उनमें और पहले नंबर के वरुण चक्रवर्ती में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन
जी
अच्छी बात यह है कि अब हमारा बल्लेबाज भी वर्ल्ड नंबर वन है
जी
और हमारा गेंदबाज भी वर्ल्ड नंबर वन है। और
जी
ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने जिस तरह से ईडन गार्डन में इस साल इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेट चटकाए थे
जी
और इसी सीरीज में राजकोट में उन्होंने 5 विकेट हॉल किया, तो
जी
उससे उन्होंने बहुत उम्मीदें जगाई हैं, क्योंकि एक ऐसा मिस्ट्री स्पिनर है ये जो कलाइयों का फनकार होने के साथ साथ बीच बीच में जब कैरम बॉल करता है और उंगलियों का इस्तेमाल करता है,
जी
वो वाकई एक अबूझ पहेली बन जाते हैं।
मनु जी, ये समझाएं हमारे श्रोताओं को कि जो वरुण चक्रवर्ती हर बार वो अपनी फ्लाइट से डिसीव करते हैं। वो जनरली हमें ये देखने को मिलता है कि बॉल अंदर पड़ के अंदर आती है और बोल्ड, अधिकतर बल्लेबाज बोल्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि LBW और एज में ज्यादा आता है। तो अब तक क्यों बल्लेबाज उनको पिक नहीं कर पा रहे?
देखिए, वाकई ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि देखने में तो हमें भी बड़ी साधारण सी गेंद लगती है। आपकी ऑफ पर पिच हुई और उसके बाद गेंद अंदर की तरफ आई, यानी जो उनकी गुगली है वो सबसे खतरनाक होती है। और वो जैसे आज आप दुनिया भर के लेग स्पिनर देखेंगे, चाहे वो रवि बिश्नोई हो, चाहे वो राशिद खान हो, वो पांच पांच छह छह बॉल या एक ओवर में चार चार गेंदे जो है वो गुगली कराते हैं, तो उससे बहुत टाइट भी हो जाते हैं कई बार। लेकिन ये अपनी गुगली, इनकी जो दो या तीन गुगली होंगी या एक या दो गुगली होंगी, वही खतरनाक साबित होती है, और बल्लेबाज उसको रीड नहीं कर पाता और गेंद या तो विकेटों में घुस जाती है, स्किट करती है गेंद बहुत तेजी के साथ, जैसे जडेजा की गेंदें बहुत स्किट करती थी, तो उसी तरीके से इनकी गेंद वाकई एक अबूझ पहेली बनी हुई है, खासकर गुगली गेंदें।
और उधर एसेस क्रिकेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चल रही द एसेस टेस्ट श्रृंखला के तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 326 रन बनाए। एलेक्स कैरी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और आज तो शतकीय पारी भी खेली उन्होंने
और वो भी ऐसे समय में जबकि आपने
टीम
केवल
स्ट्रगल।
94 रन पर 4 विकेट खो दिए थे, उसके बाद अगर आप सेंचुरी बनाते हैं और उस्मान ख्वाजा का आना टीम में, उनकी एक जबरदस्त वापसी रही, सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से 91 रन की इनकी 5वीं विकेट की पार्टनरशिप थी, और उसके बाद जो निचले क्रम में जो मिचेल स्टार्क काम कर रहे हैं इस वक्त गेंदबाज, तो वो कोई बेबाक तौर पर आप कह ही सकते हैं कि वो बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन अगर आप उनकी बल्लेबाजी देखें तो 8वें या 9वें नंबर पर आकर जिस तरह से वो 50 रन की पार्टनरशिप कर जाते हैं, जैसे जोश इंग्लिश के साथ उन्होंने की, वो भी बहुत उपयोगी साबित हुई। तो यहां जैसा पिच का बिहेवियर है उसको देखते हुए मुझे स्कोर कम नहीं लग रहा है। और वहां उधर आप देखेंगे तो इंग्लैंड में एक जोफ्रा आर्चर ही थे जिन्होंने एक अच्छी गेंदबाजी का परिचय दिया, लेकिन ब्रेंडन कॉर्स और जोश टंग में वो बात नजर नहीं आई जिसके लिए वो जाने जाते हैं।
और उधर IPL की अगर हम बात करें तो IPL के आगामी सीजन का आयोजन 26 मार्च से 31 मई तक किया जाएगा। इस नीलामी में कई राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। कैमरॉन ग्रीन की बात करें तो ऐसा पहले से भी देखा जा रहा था कि चेन्नई और KKR उनके पीछे जाएगा और वैसा ही हुआ।
पैसा बहुत था उनके पर्स में और उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, चाहे वो पथिराना हो, चाहे वो कैमरून ग्रीन हो, बहुत पैसा बहाया, मुस्तफिजुर रहमान उन पर पैसा बहाया, बिल्कुल उसी तरह जैसे वेंकटेश अय्यर पर और मिचेल स्टार्क पर पिछले वर्षों में उन्होंने पैसा बहाया था।
और भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो सरफराज हो या प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को चेन्नई ने अपने टीम में शामिल किया।
जी हाँ, ये तो मैं समझता हूँ भविष्य में जो है धोनी और जडेजा के अच्छे रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो कार्तिक शर्मा जो राजस्थान के 19 साल के खिलाड़ी हैं और उत्तराखंड के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, और वहीं जडेजा की जगह पर प्रशांत वीर आए हैं टीम में, ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और बल्लेबाजी अच्छी करते हैं।
जी और जाते जाते श्रोताओं आपको बता दें, भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने आज मुंबई के MIG क्रिकेट क्लब में महिला दृष्टिबाधित T20 विजेता टीम से मुलाकात की। सचिन ने खिलाड़ियों को उनके ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। मनोज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद।
और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।